पृष्ठ संख्या 88, संविधान की स्थापना के लिए पूर्ववर्ती परिवर्तन। इतो पश्चिमी देश का परिभ्रमण कर सन 1883 में वापस लौटा। इसके एकदम बाद ही संविधान को अंगीकार करने के लिए सरकार में आवश्यक परिवर्तन किए जाने लगे। अपने इस भ्रमण के दौरान तो इतो ने जितने भी सीमित राजतंत्रों का अवलोकन किया, उनमें से वह जर्मनी के राजतंत्र से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। वह बिस्मार्क तथा उसके साम्राज्य में हो रहे सुधार कार्यों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने अनुभव किया कि एक तंत्रीय राजतंत्र और नौकरशाही परंपरा पर आधारित जर्मनी की शासन व्यवस्था का स्वरूप नव जापान की शासन व्यवस्था के जितना निकट है, उतना किसी भी पश्चिमी राष्ट्र की शासन व्यवस्था के नहीं। उसने जापान की परंपरागत मान्यताओं में जो परिवर्तन किए, उससे यह स्पष्ट लक्षित होता है कि इन विचारों ने उसे कितना अधिक अनुप्राणित किया। उसने सर्वप्रथम अभिजात वर्ग की पुनः स्थापना 1881 की पुनः स्थापना काल के साथ ही पुराना अभिजात वर्ग औपचारिक रूप से समाप्त हो चुका था। अब इतो ने अनुभव किया कि शक्तिशाली अनुदार वर्गों के समर्थन द्वारा प्रशासन को दृढ़ आधार पर खड़ा करने तथा विधानसभा में उच्च सदन की स्थापना करने के लिए नए अभिजात वर्ग का सृजन करना अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। इस नए अभिजात वर्ग का निर्माण और सदस्यों के क्रमों का निर्धारण यूरोप के देशों के नमूने पर किया गया। नए अभिजात वर्ग की 5 श्रेणियां बनाई गई। ये उपाधियां भूतपूर्व दरबारी अभिजात वर्ग के लोगों, पुरानी प्रशासन प्रणाली के सामंतों तथा पुनः स्थापना के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों को दी गई। जापान में इसके बाद अगला महत्वपूर्ण कार्य जर्मनी के नमूने पर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन था। जर्मनी के चांसलर के समान जापान के प्रधानमंत्री के लिए भी अपने सभी अन्य मंत्रियों की राय से ही राज्य के कार्यों का संचालन करना आवश्यक था और वही प्रशासन के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी था। प्रशासनिक परीक्षा आरंभ कर नौकरशाही व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन किया गया। इसके बाद से प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश के लिए तथा सभी सरकारी नियुक्तियों के लिए इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक कर दिया गया। इन परीक्षाओं में जापान का कोई भी नागरिक बैठ सकता था। अंततः इस परिवर्तन का प्रायोजन प्रशासन पर से भूतपूर्व समुराई वर्ग के एकाधिकार को समाप्त कर नौकरशाही व्यवस्था को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करना था। संविधान की रचना तथा घोषणा। इस बीच संविधान की रचना का कार्य जारी था। यह कार्य किसी लोकतांत्रिक प्रतिनिधि सभा को नहीं सौंपा गया था। इस संविधान की स्वीकृति केवल राजा की इच्छा पर ही निर्भर थी, इसलिए इसकी रचना में जनता के प्रतिनिधित्व का कोई प्रश्न ही न था। यह कार्य इतो के नेतृत्व में कुछ लोगों को सौंप दिया गया। इन लोगों ने गुप्त रूप से इन कार्य को संपादित किया ताकि कार्य पूरा होने तक समाचार पत्रों में इस विषय पर किसी प्रकार की आलोचना न हो। इस काम को पूरा करने में बहुत अधिक समय लग गया और सन 1889 में राजा ने इस संविधान को स्वीकृति प्रदान की। सम्राट ने काफी धूमधाम के साथ एक बड़े समारोह में इस संविधान को औपचारिक रूप से घोषणा की। संविधान की शर्तें। इस संविधान की निम्नलिखित प्रमुख शर्तें थीं। सर्वप्रथम इसमें राजा के पद के महत्व का प्रतिपादन किया गया था और यह घोषित किया गया था कि तत्कालीन राजा शाश्वत काल से अनवरत रूप से चली आ रही श्रृंखला की ही एक कड़ी है। वह संपूर्ण सत्ताधिकार का स्रोत था और उसी में संपूर्ण प्रभुसत्ता निहित थी। वही सर्वविध कानूनों को स्वीकृति प्रदान करता था तथा उनका ऐलान करने और अमल में लाने के आदेश जारी करता था। वही डाइट विधानमंडल का सम्मिलन अधिवेशन बुलाता था और अवर सदन को भंग करता था। जब डाइट का अधिवेशन न हो रहा हो तो उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार था, जो कानून के समान ही प्रभावशाली होता था। वह सरकार की कार्यपालिका शाखा का प्रधान था और उसे अधिकारियों को नियुक्त करने, पदच्युत करने एवं उनके वेतन आदि निर्धारित करने का अधिकार था। वह स्थल सेना और नौसेना का सर्वोच्च सेनापति था तथा उसे युद्ध घोषित करने, शांति स्थापित करने और संधियां निष्पादित करने का भी अधिकार प्राप्त। वह लोगों को इच्छानुसार अभिजात वर्ग की पदवियां प्रदान करता था और उसे वैयक्तिक एवं सार्वजनिक क्षमा प्रदान करने का अधिकार था। दूसरे शब्दों में वस्तुतः वह सर्वोपरि था। यद्यपि ये सब कार्य व्यवहारिक रूप में उसके मंत्रियों द्वारा ही निष्पादित किए जाते थे, परंतु वे डाइट अर्थात विधानमंडल के बजाय राजा के प्रति उत्तरदायी थे और वह जब चाहे उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता था। ऐसा होते हुए भी जर्मनी के सम्राट कैसर के समान वहाँ का राजा कभी भी प्रत्यक्ष रूप में प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था और न ही किसी प्रकार का मार्ग निर्देशन करता था। सामान्यतः वह राज्य करता था, शासन नहीं। उसने इस नए शासन के अधीन कभी भी प्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकारों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया। सामान्यतः महत्वपूर्ण सरकारी विषयों पर अपने प्रीवी काउंसिल तथा मंत्रियों की सलाह से ही वह कार्य करता था। वहां के राजा की स्थिति बिल्कुल इंग्लैंड के राजा जैसी न थी, क्योंकि सांविधानिक दृष्टि से यदि वह चाहता तो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता था और उसके साथ ही वहां राजा की स्थिति विधानमंडल की कृपा दृष्टि पर निर्भर न थी। सामंत युग में जिस प्रकार सारे राज्य का प्रशासन शोगुनों के द्वारा होता था, उसी प्रकार इस समय वहां राज्य के कार्यों का संचालन मंत्रिमंडल तथा प्रिवी काउंसिल के द्वारा किया जाता था। तोकुगावा शासन काल में राज्य के प्रशासन के बारे में राजा की सलाह तक न ली जाती थी, लेकिन अब राजा के साथ विचार विमर्श द्वारा ही राज्य का कार्य किया जाता था। अब राज्य प्रशासन में उस समय की अपेक्षा उसका कहीं अधिक महत्वपूर्ण हाथ था। जापान में इस समय राजा द्वारा प्रजा के अनेक अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई। सभी जापानियों के लिए करों के भार को वहन करना तथा सैन्य सेवा अनिवार्य थी। कानून द्वारा लागू किए गए कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर उन्हें सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त थे। गृह परिवर्तन की स्वतंत्रता थी। उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती थी तथा उन्हें भाषण देने, सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होने, लेख आदि प्रकाशित करने की स्वतंत्रता थी। संगठन कार्यों एवं धार्मिक मामलों में भी उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त थी। उन्हें कानून के अधीन ही गिरफ्तार किया जा सकता था तथा इस हालत में उन पर वैध रूप से नियुक्त न्यायाधीशों द्वारा ही उनके मुकदमे की सुनवाई हो सकती थी। उनकी संपत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था थी तथा उन्हें याचिका देने का अधिकार प्राप्त था। यद्यपि जापान ने प्रजा के इन अधिकारों को स्वीकार कर सामंत प्रशासन के समय से बहुत अधिक तरक्की की थी, परंतु यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि ये सुविधाएं जितनी पहले पहल आकर्षक प्रतीत होती थी उससे कहीं अधिक सीमित थी। इनमें से अधिकांश अधिकार कानून द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों के अधीन ही प्रदान किए गए थे, इसलिए सरकार जब चाहे उन अधिकारों से प्रजा को वंचित कर सकती थी। राजकीय डाइट यानी विधानमंडल के दो सदन थे, अभिजात सदन और प्रतिनिधि सदन। इनमें से प्रथम में, जिसका रूप आगे चलकर कुछ परिवर्तित कर दिया गया था, राज परिवार तथा दो उच्च अभिजात वर्गों के सदस्य निम्नतर तीन अभिजात वर्गों के सामंत जनों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सम्राट द्वारा नामित प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा सर्वाधिक कर देने वाले कुछ व्यक्ति होते थे। स्पष्ट ही इसमें अधिकांशतः अनुदार वर्गीय लोग थे, जिनसे यह आशा की जाती थी कि वे अवर सदन की उदार वर्गीय प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखेंगे। प्रतिनिधि सदन में पूर्णतया निर्वाचित सदस्य होते थे। ये सदस्य एक एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। सिद्धांत रूप में इन क्षेत्रों की आबादी लगभग समान सी होती थी। अनेक वर्षों तक मतदान के अधिकार का निर्णय संपत्ति के आधार पर किया जाता रहा। डाइट का अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करता था। यह अधिवेशन 3 मास तक जारी रहता था, लेकिन सम्राट को इसकी अवधि में परिवर्तन करने का अधिकार था। इसमें भाग लेने वाले सदस्यों को वाद विवाद की स्वतंत्रता थी तथा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सरकार भी कानून पास करने के लिए प्रस्ताव रख सकती थी। डाइट की अनुमति के बिना किसी भी तरह का करारोपण नहीं किया जा सकता था तथा संसद से वार्षिक बजट की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था, परंतु डाइट को आर्थिक मामलों में पूर्ण अधिकार प्राप्त न थे। वेतन का नियंत्रण तथा राज परिवार पर होने वाला व्यय इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। डाइट के बजट को स्वीकृति प्राप्त न होने पर मानक के रूप में पूर्व वर्ष का बजट ही व्यवहारिक रूप से जारी रहता था। राजा को विधान पर पूर्ण निषेधाधिकार प्राप्त था। डाइट को मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्यों से प्रश्नोत्तर करने का महत्वपूर्ण विशेषाधिकार मिला हुआ था। दोनों सदन राजा को संबोधित करके अपना असंतोष प्रकट कर सकते थे और किसी मंत्री पर दोषारोपण कर सकते थे। डाइट को उतना अधिक अधिकार प्राप्त न था जितना ब्रिटिश संसद को प्राप्त है। मंत्रिमंडल इसके प्रति उत्तरदायी न था। यदि जनमत का प्रश्न न होता तो किसी भी कठोर राजा ने इसको कभी का भंग कर दिया होता। इसके अलावा अनेक मामलों में उच्च सदन का अवर सदन पर काफी नियंत्रण था, और चूंकि उच्च सदन में अनुदार वर्ग के लोग थे इसलिए यह अवर सदन के किसी भी परिवर्तनवादी प्रस्ताव को पारित होने से रोक सकता था। राजा की व्यक्तिगत सलाह के लिए प्रिवी काउंसिल नामक एक विशिष्ट परिषद थी जिसकी नियुक्ति स्वयं राजा द्वारा की जाती थी। इसमें जापान के विशिष्ट राजमर्मज्ञ सम्मिलित होते थे। मंत्रिमंडल के मंत्री भी इसके पदेन सदस्य होते थे। इसके साथ ही वरिष्ठ राजमर्मज्ञों की एक अन्य परिषद थी जो लिखित संविधान द्वारा तो स्वीकृत न थी परंतु अलिखित संविधान में इसका इतना महत्वपूर्ण स्थान था कि इसका यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक है। वरिष्ठ राजमर्मज्ञों की यह परिषद, जिसे जेनरो कहते थे, एक ऐसी अनौपचारिक परिषद थी जिसके सदस्य सरकार की पुनः स्थापना में नेतृत्व करने वाले समुराई वर्ग के लोग थे। राजा के यहाँ उनकी सुनवाई होने से तथा अपनी अतीत की उपलब्धियों के कारण उन्हें राष्ट्र की प्रशासन व्यवस्था में प्रभुत्व पूर्ण स्थान प्राप्त था। उनका कार्य केवल परामर्श देना था, परंतु किसी भी राष्ट्रीय संकट की स्थिति में उन्हें प्रिवी काउंसिल, मंत्रिमंडल अथवा डाइट की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता था। 19वीं शताब्दी की अंतिम दशाब्दी तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में वरिष्ठ राजमर्मज्ञों की परिषद अत्यंत शक्तिशाली थी, परंतु इसके सदस्यों की मृत्यु के पश्चात यह संस्था लुप्त सी हो गई।